शांति। ब्राह्मण जीवन का जो तप है उसका फल क्या है? खुशी। तो सारे कल्प में केवल अब ये थोड़ा सा समय हमको मिलता है जो हम खुशी की चरम अवस्था की अनुभूति करते हैं। देवताओं को भी उतनी खुशी नहीं होती है जितनी हम सब ब्राह्मणों को है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं कौन है? कौन है? स्वयं जो सृष्टि का रचयिता है, जो खुशियों का सागर है, वो हमारे साथ में रहता है। तो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हम सब आत्माओं का पद्मा पद्म सौभाग्य है जो भगवान के साथ रहने का एक अवसर मिलता है, सुनहरा अवसर मिलता है। भक्ति में तो बहुत जप तप पाठ पूजा किए, कीर्तन किए, और भक्ति में क्या कहा? मैं गुलाम आज की मुरली में था। ऐसे अनेक प्रकार की जंजीरों में हमने अपने मन को बांध के रखा था। अब बाबा ने सारी जंजीरों से हमको मुक्त कर दिया। कौन कौन सी जंजीरें थी भक्ति मार्ग की? कौन कौन सी जंजीरें थी? हाँ जी, रीति रिवाज और जाति पाति और हाँ जी, तो बहुत प्रकार की जंजीरें थी जो बाबा ने हम सबके जीवन में उन सब जंजीरों को मुक्त कर दिया, जंजीरों से हमको मुक्त कर दिया। तो इस तपस्वी जीवन में निरंतर खुशी कैसे रहे? बाबा ने कहा तपस्वी जीवन अर्थात क्या? नाचना गाना और मौज मनाना। लेकिन ये संसार की तरह मौज नहीं है, यहाँ तो साधना तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये तपस्या जो हमारे जीवन में संगीत की तरह एक हिस्सा बन जाए, जैसे गीत सुनते पांव अपने आप थिरकने लगते हैं, जिसको नहीं भी नाचना होता है तो अपने आप ही उसको उसके पांव चलने लगते हैं। तो साधना भी तपस्या भी एक ऐसी चीज है जिससे मन नाचने लगता है, मन को उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इस देह रूपी धरनी से वो ऊपर उड़ने लगता है, नील गगन में विचरण करने लगता है, आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है, परम धाम में पहुंच जाता है। तो जैसे स्वतंत्र पंछी की तरह बाबा ने हम सबको एक पंख दे दिए। तो ये संसार की तरह तपस्या नहीं है, ये सहज तपस्या है। लेकिन इस सहज तपस्या को अनुभव करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते साकार मूल्यों में कोई मासी का घर नहीं है, धीरे धीरे मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज बाबा ने किसको देखा? कौन किससे मिलने आया? आज बाप दादा तपस्वी राज आत्माओं से मिलने आया है। तपस्वी राज अर्थात जिसने स्वयं पर शासन करना सीख लिया, स्वयं पर राज्य करना सीख लिया, स्वयं की कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना सीख लिया। और जितना स्वराज्य में रहेंगे उतना भविष्य राज्य भी उतना ऊंच मिलेगा। और भविष्य तो बाद की बात है, लेकिन अभी की जो अनुभूति है, दूसरों पर राज करना आसान है लेकिन स्वयं पर राज करना, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना, उसकी जो खुशी है, उसकी जो अनुभूति है, वो स्वर्ग की अनुभूति से भी बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है वो अनुभूति। तो तपस्या अर्थात स्वयं पर राज्य करने के लिए बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार की विधियां बताई हैं जो बाबा कहते निरंतर योग के प्रयोगी बनो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने हमको जन्म दिया है। संसार की तरह कोई छोटा मोटा मिनिस्टर होता है, नेता होता है, तो उसकी फैमिली को भी नशा रहता है कि हम फलाने की फैमिली हैं या फलाने के बच्चे हैं, हम सब किसके बच्चे हैं। तो क्या उतना नशा रहता है? कभी कभी नशा कम भी हो जाता है और उसको भी हमको स्वीकार करना, ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हाँ हमको नशा रहता है, अंदर से तो हमको पता है कि कितना नशा हमको रहता है। कोई भी छोटी मोटी बात आती तो क्या होता है, खुशी 9-2-11 हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और होता तो है ना बीच बीच में, कल की मुरली में था ना बाबा ने क्या कहा, माया अंत तक आएगी, पछाड़ेगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, बहादुर बन के रहना है। युद्ध के मैदान में हो तुम, इम्तिहान दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं पेपर आएंगे नहीं, पेपर तो आएंगे आएंगे। अब बाबा तो सहज रूप से बोल के चले जाते हैं विघ्नों को खेल समझो, और जब विघ्न आते तो क्या होता है, वो हमसे खेल के चले जाते हैं ऐसे। तो अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे तो वो विघ्न खेल की तरह अनुभव होंगे, नहीं तो केवल वो मन तक ही रह जाएगी बात कि हाँ विघ्नों को खेल समझो, परिस्थितियां हमको पाठ पढ़ाने आती हैं, परीक्षा है, हमको परिपक्व बनाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या क्या चीज है? तपस्या वास्तव में बहुत आसान है, मुश्किल तो संसार वालों ने बना दिया और बाबा ने हम सबको सहज बना दिया। तपस्या माना बाबा की याद, बाबा के ज्ञान की याद, बाप के गुणों की याद, बाप के कर्तव्य की याद, बाप के घर की याद, अपने घर की याद, अनादि रूप की याद, आदि स्वरूप की याद, आदि गुण अनादि गुणों की याद। आज था ना मुरली में तपस्या अर्थात अनादि और आदि गुणों की महिमा करना, गुणगान करना, बाप की महिमा करना। तो तपस्या वास्तव में आसान है, लेकिन अगर हम उस अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे तो, जैसे हम देह की स्मृति में आते हैं, चेतना सारी देह के इर्द गिर्द सारा दिन घूमती रहती है, देह के विचार ही बुद्धि में चल रहे हैं या देह का ही चिंतन कर रहे हैं, देह के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए सबसे पहला पाठ बाबा ने क्या कहा, अपने को आत्मा समझो, और यही ज्ञान तपस्या है। इसमें थोड़ा कठिनाई है, लेकिन धीरे धीरे करते करते अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, तो अभ्यास करते 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 एक ना एक दिन वो अनुभूति होने ही लगती है। और जैसे मेडिटेशन में योग में बैठेंगे तो फट से अनुभव होगा, जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होगी, तपस्वी अर्थात एक सेकंड में बॉडी से डिटैच। सारा खेल हमारा संकल्पों के ऊपर है, किस क्वालिटी के संकल्प हम चलाते हैं, किस क्वालिटी के संकल्प अपने बुद्धि में रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। जो संकल्प हमने रखे हैं उन्हीं संकल्पों के अनुसार हमारी साधना चलती है, और जितने शक्तिशाली संकल्प होंगे उतनी साधना फलीभूत होगी, उतना उस तपस्या का परिणाम प्रत्यक्ष फल खुशी रहेगी। तो सारा खेल हमारे संकल्पों पर है, कितने शक्तिशाली संकल्प हैं, कितने श्रेष्ठ संकल्प हैं, कितने पवित्र संकल्प हैं, कितने ऊंचे संकल्प हैं, कितने कल्याणकारी संकल्प हैं, उन संकल्पों में कितनी शुभ भावना शुभकामना समाई हुई है, कितने वो पॉजिटिव हैं सकारात्मक हैं, सारा खेल हमारे विचारों पर है। जिस दिन हमारी विचारधारा अच्छी रहती है, अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, तो जैसे योग में सहज उड़ जाते हैं हम, और जिस दिन सारा मन बुद्धि छोटे मोटे व्यर्थ के छोटी छोटी बातों में चले जाते तो क्या होता है, माथा भारी। आज बोला ना बाबा ने मुरली में, माथा भारी क्या क्यों होता है, एक छोटी सी बात कर देते हो, कौन सी, जो बाप की जिम्मेवारी उसको अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो। जब जिम्मेवारी लेने के लिए बाबा बैठा हुआ है तो फिर हम क्यों उसको अपना समझ लेते हैं। जो हमको सेवा मिली है अगर हम ये समझ कर करते हैं कि ओहो मेरा सौभाग्य कि भगवान ने हमको ये ऑफर दी है, हमारा भाग्य बनाने के लिए इस सेवा के लिए हमको चुना है, हम यहाँ केवल निमित्त हैं, वो हमारा भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है, तो कितनी खुशी रहेगी उसकी। वो कर्ण करावन हार है, निमित्त मैं हूँ, मुझे निमित्त बनाया है, या मैं ट्रस्टी हूँ, ये सारी स्मृतियाँ रहती हैं तो मन जैसे शक्तिशाली रहता समर्थ रहता है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मैं पाना जाता है, मेरी सेवा, मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है। लास्ट से लास्ट संडे बाबा ने क्या बोला था, प्रभु विशेषताएँ क्या हैं, वो प्रभु प्रसाद है, उसमें उसको मैं अपनी समझना महापाप है, मैं आया तो मैलापन, आत्मा मैली होगी। तो कितना ऊंचा ज्ञान है कि जो स्पर्श ही ना करो उस चीज को। पिछले संडे की मुरली में था ना, कर्मातीत अर्थात क्या, कर्म और कर्म का परिणाम स्पर्श ना करे। कितनी बड़ी परिभाषा हो। तो अगर वो जो बाबा की सेवा है उसको मैं ही समझ के चलते हैं कि ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि उसने हमको अपनी इस सेवा के लिए चुना है। संसार में कितने सारी आत्माएं हैं लेकिन गिने चुने आत्माएं हैं जिनके ऊपर भगवान की नजर पड़ी है, जिनको उसने अपने पास बुला लिया इस संसार को नई रोशनी देने के लिए, संसार का बेड़ा पार करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए। तो हमारा कितना सौभाग्य है। अगर हमको ये स्मृति नहीं रहती है तो धीरे धीरे अहम अंदर 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 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मैं और मेरा, यही दो शब्द चढ़ाने वाले भी हैं तो ये दो शब्द गिराने वाले भी हैं। अगर मैं स्मृति में आया तो क्या सोचो, मैं आत्मा हूं और उसके साथ फिर अनेक प्रकार के सुमान वो जोड़ दो। अगर मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा है। तो लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद ही ये हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा और वही मैं और मेरा शब्द ये हमारे जीवन का गीत संगीत बन जाएगा। जब भी मैं शब्द बुद्धि में आएगा या मेरा शब्द आएगा, कहीं भी सामान हम लेने जाते हैं ये मेरी चीज है, उसी समय तो भले हम कहने में तो आ रहा मेरी चीज है लेकिन तुरंत मन में वो आवाज आएगी मेरा बाबा उसकी चीज है ये, तो वो अंदर ही अंदर गीत संगीत गूंजने लगेगा और पांव थिरकने लगेंगे, मन डांस करने लगेगा। मन को भारी तो हम खुद ही बनाते हैं, बाबा तो हमारे मन को हल्का बनाने के लिए आया हुआ है। पिछले संडे की मुरली में था ना, हल्का, हर चीज में हल्का, संकल्प बोल कर्म समन संपर्क सब में हल्का। आगे टाइम ऐसा आएगा बाबा कहते जो मनुष्य की वृत्तियां भी भारी कर देंगी और प्रकृति की भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी वो मन को भारी कर देंगी। तो बाबा तो हमारे सारे बोझ हरने के लिए आया हुआ है, उसने हमारे भाग्य को बढ़ाने के लिए, तकदीर को बढ़ाने के लिए कलम दी है स्वयं हमको। अब जिसके पिता के हाथ में बच्चे के भाग्य बनाने की कलम हो तो पिता भाग्य कैसे बनाएगा अपने बच्चे का। आपके हाथ में कलम दे दी जाए कि अपने भाग्य, अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो आप कैसा लिखेंगे, कोई ऐसा वैसा लिखेंगे, अच्छे से अच्छा लिखेंगे ना। तो स्वयं सृष्टि का भाग्य विधाता जो है वो हमारा भाग्य लिख रहा है, तो ऐसा वैसा भाग्य थोड़ा नहीं हमारा। इसलिए आज का प्रदान क्या था, भाग्य की स्मृति रहे तो क्या होगा, हमेशा खुश रहेंगे। तो चलन और चेहरे से वो दिखाई देगा प्रैक्टिकल में। हमारे ज्ञान का जो परिणाम है, ज्ञान का स्वरूप है, कहां से दिखाई देता है, ये चेहरे से। इसलिए तपस्या अर्थात नाचना गाना मौज मनाना। तपस्वी राज संसार में जो तपस्वी होते हैं वो भी कितना अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, तपस्या कहां करते हैं संसार में, गुफाओं में जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको कौन सी गुफा दे दी, अंतर्मुखता की गुफा, कि बाहर देखो ही नहीं, बहुत देख लिया बाहर, आंखें बंद करके सीधा अंदर में बैठ जाओ, सोच लो अंदर में यहां सिंहासन रखा हुआ है और उस पर बड़ा सिंहासन है, मैं और बाबा दोनों बैठे और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। ये योग का प्रयोग बहुत अच्छा है क्योंकि मन को तस्वीर चाहिए, मन वहां भागता है जहां उसको दिखाई देता कुछ। तो योग के प्रयोग, बाबा ने बोला ना तीन प्रकार के बच्चे, स्नेही सहयोगी, फिर योगी, स्नेही योगी, योगी फिर पहले स्नेही सहयोगी यहां, फिर सहयोगी योगी, फिर तीसरे निरंतर योगी प्रयोगी। तो तीन प्रकार के, तो प्रयोग करना अंदर में। जैसे हम बैठे हैं, जितना भी समय बैठे हैं, बस आंखों में बंद करके वो तस्वीर पकड़ के रखनी है उसको, ऐसे महसूस करना जैसे मैं और बाबा दोनों यहीं बैठे हुए, यही परमधाम आ गया सारा। क्योंकि मन बुद्धि तो यहां से भागता ना, अब ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, परमधाम बना लो इसको, ब्रिक्टी कोई। हम दोनों बैठे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, फिर जा रहा मन, फिर पकड़ो उसको बार बार, क्योंकि ये तो बड़ा नजदीक है ना, दूर जाने में मेहनत लगती है, यही इसको अपना घर बना लो। क्योंकि लंबे समय तक हमारी साधना कौन सी है, आत्मा की साधना चाहिए। तो लंबे समय तक जब हम यहां से डिटैच होने का प्रयास करेंगे तो वो निरंतरता सहज होती जाएगी। यहां से हम प्रयास नहीं करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे नहीं, या बाबा का अनुभव, यहां साथ का अनुभव करेंगे नहीं, ऊपर बुद्धि जाएगी नहीं। जैसे हम यहां से डिटैच होंगे, क्योंकि हम किसके साथ बैठे हैं, निराकार के साथ बैठने का अनुभव कर रहे हैं, तो वो अपने आप खिंचावट होगी। फिर दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बाबा यहां से मुझे लेकर चला गया ऊपर सीधा। तो तपस्या अर्थात स्वराज्य अधिकारी, इन कर्म इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, आंखों पर, मुंह पर, इन हाथों पर, कानों पर, हर कर्म इंद्रियों जैसे हमारे कंट्रोल में हो जाए। और ये कर्म इंद्रियां तड़फाती हैं, धोखा देती हैं, भटकाती भी बहुत है, लेकिन इन कर्म इंद्रियों को भी अपना मित्र बनाना, दोस्त बनाना। जिन कर्म इंद्रियों ने हमको जन्म जन्म धोखा दिया है, अब उन्हें कर्म इंद्रियों से मित्रता करनी है, क्योंकि लंबे 24 घंटे में कहां रहते हैं, आत्मा कहां रहती है, इसी शरीर के अंदर तो रहती है। अब जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर के कर्मचारियों को, कर्मचारियों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, उनका उनको पूछते नहीं है, उनको अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते नहीं है, तो कर्मचारी हमारे साथ अच्छा रहेंगे? तो ये जो हमारे कर्मचारी हैं, ये तो हमारे सच्चे मित्र हैं, इनके माध्यम से तो हम अच्छा प्रसाद कर सकते हैं। अगर पूरा दिन हम इनकी देख रेख नहीं करेंगे, इनकी परवरिश नहीं करेंगे, तो हम खुद ही धोखा खाएंगे। तो इन कर्म इंद्रियों से भी दोस्ती करनी है ना। पहले भी बताया था कि अब ये साधारण शरीर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, उस तपस्या का प्रभाव हमारी बॉडी पर भी पूरा पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाते हैं, साधारणता में चले जाते हैं, बोल चाल साधारण हो जाते हैं, सुनना बोलना उठना बैठना साधारण, तो उस साधारणता का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो जितना महानता में रहेंगे, साधारणता अपने आप समाप्त होती जाएगी, जितना महानता में रहेंगे उतना बुद्धि भी महीन बनती जाएगी, सूक्ष्म माया के रूपों को पकड़ सकेंगे, पहचान सकेंगे, नहीं तो पहचान में नहीं आती माया, तो नए नए रूप से आएगी, मोटे मोटे रूप से तो ठीक है, जो छोटे मोटी बाबा ने कहा तुम्हें विकारों में नहीं जाना है या खान पान शुद्ध रखना है, ये सब बातें तो हो जाएंगी, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से मन जो भाग रहा है उसका क्या? तो जितना महानता की तरफ जाएंगे उतना हमारी बुद्धि भी महीन बनती जाएगी। तो तपस्या अर्थात स्वराज्य अधिकारी, शक्तिशाली आत्मा, तपस्या अर्थात नाचना गाना और मौज मनाना, और तपस्या अर्थात गुलामी से मुक्त। गुलामी किसी को अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो हम सबको बाबा ने क्या बना दिया? राजा बना दिया, बताया ना, तपस्वी अर्थात राजा आत्मा है, राज्य भी है तो भाग्य भी है। कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भाग्य विधाता रोज हमें जगाने आता है, हमारे भाग्य का निर्माण करने आ रहा है, बार बार कह रहा है बच्चे अपना भाग्य बना लो, अपना भाग्य बना लो, अपना भाग्य बना लो। कितनी बड़ी हमारी लॉटरी लगी, कितनी हमारी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी किस्मत है कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर को जगाने आया हुआ है। कितना बड़ा नशा हो, कितनी बड़ी उसकी खुशी रहनी चाहिए, कितना श्रेष्ठ जीवन हो गया है, बताया ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, क्या से क्या बना दिया। बाबा कहते केवल यही गीत नहीं गाओ, और क्या गीत गाओ। आया था ना मुरली में कि बाबा ने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम भी कमाल करके दिखाओ। वो तो हम बाबा के तो गुण गाते रहते हैं, अपने भी कमाल करके दिखाओ कुछ। तो कुछ अपना ऐसा पुरुषार्थ करना है जो जीवन में परिवर्तन की महसूसता हो, कि दिन प्रतिदिन हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है। खुद ही खुद पर नजर रखनी पड़ेगी, पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ेगा। तो गुलामी से बिल्कुल मुक्त, देखना कौन कौन से अपने संस्कार या फिर दूसरों के संस्कार। एक तो कई बार होता है कि हम अपने संस्कारों से दुखी हो जाते हैं, कई बार दूसरों के संस्कारों से भी दुखी हो जाते हैं, जबकि हमको पता है भाई ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, किसी का कोई दोष नहीं है, फिर भी हम दूसरों के संस्कारों को पकड़ लेते हैं। जो करेगा सो पाएगा, सब बातें पता है, वो पता होने के बाद भी दूसरे के स्वभाव संस्कार को हम पकड़ लेते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, मर्यादाओं के खिलाफ चल रहा है। तो दूसरे के संस्कार भी जैसे हमको गुलाम बना देते हैं, और वो उनके संस्कार जैसे अंदर जितना हम उनका चिंतन करेंगे ना, वो संस्कार भी अंदर में समा जाएंगे, वो भी अपने बन जाएंगे। इसलिए जिसके बारे में जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे हम बनते जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाप के गुणों की महिमा करो, गुणगान करो, अपने आदि रूप का अनादि रूप का गुणगान करो। तो तपस्या सहज है, लेकिन स्मृति चाहिए, बार बार मन को स्मृति से तरोताजा करने पड़ेगा कि कितनी सारी स्मृतियां हमको दी हुई हैं। चार पांच संडे पहले था ना मुरली में, 12 मई की मुरली में संडे की, उसमें भी था तपस्या अर्थात मौज मनाना, नाचना गाना, सेम बहुत सारी मुरली मिलती जुलती है उसमें। तपस्या एक जैसे रूहानी चुंबक है, खींचती है वो। संसार में तपस्वी करते हैं साधना तो कैसे लोग उनके पीछे जाते हैं? पुराने टाइम में भोजन लेने के लिए आते थे वो लोग, उनके पास भोजन देने के लिए जाते थे उनको। तो तपस्या एक चुंबक की तरह खींचती है सबको। और तपस्या कौन कर सकता है, उसके क्या लक्षण होंगे, पवित्रता। जितनी हमारी प्योरिटी ज्यादा है उतनी तपस्या प्रखर होगी, उतनी तपस्या सहज होगी, उतनी तपस्या शक्तिशाली होगी, उतनी तपस्या सबको सुख देने वाली होगी, उतनी तपस्या सबके लिए कल्याणकारी होगी। आज बाबा ने कहा ना वाइब्रेशन की सेवा, क्या बोला वाइब्रेशन के लिए, हाँ सारे संसार को अभी आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन की आवश्यकता है। तो क्या सारे दिन में हमको याद रहा, आज कहा ना योग का प्रयोग करो, है ना। ट्रस्टियों से बाबा ने बात की कि ब्राह्मण जीवन में कभी माथा भारी हो नहीं सकता है। भारी क्यों होता है, क्योंकि जिम्मेवारी अपनी समझ लेते हो। तो बाबा ने कहा जितना अपने संकल्पों को वहां यूज कर तो उतना उन संकल्पों को योग के प्रयोग में करो, समय संकल्प श्वास, है ना। अगर हम थोड़ा भी योग करते हैं तो क्वालिटी वाला योग होना चाहिए। बोला ना कम खर्चा प्राप्ति अधिक, कम खर्चा बाला निशीन, ब्रह्मा का एग्जाम्पल पिछले संडे की मुरली में दिया था। तो अगर थोड़ा भी कर रहे हैं योग तो उसकी प्राप्ति अधिक अनुभूति होनी चाहिए, लगना चाहिए कि जैसे 33,000 का करंट लग गया, 33 KV का करंट लगा, अंदर में झटका लग गया, एकदम चैतन्यता आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा देर बैठे हैं और सुस्ती आती, या 2 घंटे योग में बैठे हैं या 4 घंटे बैठे हैं और आधा घंटा नींद में, आधा समय नींद में चला गया, उसकी भी खुशी नहीं रहती है। नहीं तो कई बार सवेरे जल्दी भी उठ जाते हैं, 4 घंटे कर लेंगे लेकिन 2-2.5 घंटे नींद में जाएंगे तब भी खुशी नहीं रहेगी। इसलिए भले जो नियम मर्यादा बने उनके अनुकूल करो, लेकिन पावरफुल योग करना चाहिए। अगर 4 घंटे तो 4 घंटे पावरफुल योग चाहिए, लेकिन उसके लिए अंदर में उतना मटेरियल भी चाहिए, उतनी ताकत भी चाहिए, उतनी शक्ति भी चाहिए, उतना ज्ञान भी चाहिए अंदर में, उतने खजाने भी चाहिए अंदर में, उतनी प्राप्तियों की स्मृति भी चाहिए अंदर में, उतनी लगन भी चाहिए, पहले से प्लानिंग चाहिए, तो वो आंखें शेर की तरह खुली रहेंगी। नहीं तो धीरे धीरे, क्योंकि शरीर तो नींद मांगेगा मांगेगा, इसको जबरदस्ती नहीं चला सकते। इसलिए घोड़े को जबरदस्ती नहीं चलाना, इसको जितना प्यार से चलाएंगे उतना हमारे लिए हित में, हित का काम करेगा, कल्याण का काम करेगा। जबरदस्ती चलाएंगे तो एक दिन ये भी जवाब देगा फिर। इसलिए इसकी भी समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हर बात में अंडरस्टैंड चाहिए। तो तपस्वी अर्थात नाचना गाना, कम खर्चा प्राप्ति अधिक, और तपस्वी अर्थात गुलामी से मुक्त। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान और गुलाम, ये शोभता है। सोचने से लगता है कि हम भगवान के बच्चे, और फिर मन बुद्धि भटक रहा है तो कभी कभी अपने पर ही शर्म आ जाती है। परसों मुरली में था ना, अरे तुम इतने बड़े बाप को भूल जाते, शर्म नहीं आती है। सकार मुरली में था ना परसों, वो तुमको इतना ऊंचा राज्य भाग्य देने के लिए आया हुआ है और उसे भूल जाते हो, कितनी कमाल की बात है। तो हम भूलते तो नहीं है, माया बुला देती है, फिर बाबा हमारा भी पक्ष ले लेते, कोई तुम नहीं भूलते, माया बुला, माया का दोष है ये। लेकिन फिर भी हमको अटेंशन तो रखनी पड़ती है ना। तो हर चीज में अटेंशन चाहिए, कदम कदम पर अटेंशन चाहिए। तो तपस्वी अर्थात कितनी बातें थी, नेक्स्ट तपस्या अर्थात और क्या बताया, चौथा, हाँ जी हाँ, तपस्या अर्थात तू मेरा मैं तेरी। अब ये तो तू मेरा मैं तेरी कहना तो सहज हो गया, लेकिन उसके आगे क्या, बोलने से थोड़ा नहीं होगा, कुछ तो करना भी पड़ेगा ना। मैं तेरी अर्थात क्या है, समर्पण बुद्धि, कहां भी कोई अटैचमेंट नहीं हो, लगाव नहीं हो। जो बाबा ने कहा भले घर में रहो, कमल फूल समान रहो, लेकिन ट्रस्टियों का संभालो उसको, वहां अटैचमेंट नहीं हो। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, रहेंगे तो अपने ही, जाएंगे थोड़ा बाबा थोड़ा लेके जाएगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं हुआ। वो बच्चे भी बाबा के और पति भी बाबा का पति है वो वो तो पति होगा पति है तो है तो उसी के, बच्चे तो सारे उसी के है ना। तो वहां अटैचमेंट नहीं हो हमारी, जब भी हम घर में रहते, क्योंकि घरों में समस्याएं तो आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो ठीक है, बोलना तो आसान होता है, जिसको सामने आती ना पता तो उसी को पड़ता है। बाबा ने कुछ दिन पहले बताया ना, बंदेलियों को घर में मार पड़ती है, अत्याचार होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा धीरे धीरे कर्मबंधन सारे खलास हो जाएंगे, है ना। और उसकी युक्ति भी बताई थी बाबा ने, अगर कोई ज्यादा अत्याचार बंधन डालता तो क्या बोलो, क्या बोलो कि मुझे रात को सपना आया था क्या, के देवी प्रकट हुई थी, भगवान प्रकट हुआ था और मुझे पवित्र रहने के लिए बोला है। तो ऐसे बहाने लगा भी सकते हो। युक्ति से मुक्ति है जिसमें कल्याण हो, क्योंकि भगवान की सेवा में हम मददगार हैं। तो वहां वो झूठ कहना झूठ नहीं है, वो तो विश्व के हित के लिए कह रहे हैं। तो तपस्या अर्थात तू मेरा, जो भी संबंध है सच्चे दिल से अपना पोता मेल चार्ट उसको बता देना बाबा को, जो है जैसे हैं, जो भी कमी कमजोरी है वो भी बता देनी है। बाबा ने कहा मांगने की जरूरत नहीं है, है ना, भाग्य विधाता आपका अपना हो गया तो मेरी ये कमजोरी ले लो या मुझे शक्ति दे दो, ये बातें भी करने की जरूरत ही नहीं है। अभी वो उसने सब कुछ दे दिया। जब भी हम बैठते हैं मेडिटेशन में या बाबा को याद करते चलते फिरते, सीधा ये सोचो कि मैं बाप समान हूं, भले वो लक्षण हमारे में नहीं है लेकिन फिर भी उसी समान में रहो, क्योंकि जब हम फाइनल स्टेज की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो वो लक्षण अपने आप आने लगेंगे। अगर हम पहले हम छोटे छोटे समान में रहते हैं तो लक्षण भी हमारे में वैसे आएंगे। इसलिए जो तपस्वी होते संसार के वो क्या कहते हैं, शिवोहम शिवोहम, वो अपने आप को शिव मानते हैं। और बाबा हमको यहाँ क्या कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, समानता तो है ना उधर, वो तो अपने आप को शिव ही समझ कर बैठ गए हुए हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमको आप समान बनाते हैं। तो उस स्थिति में रहना है कि मैं निराकार बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जैसे बाबा के संस्कार हैं वो ही संस्कार मुझ आत्मिक हैं, जैसे बाबा की दृष्टि है वो ही मुझ आत्मा की दृष्टि है, जैसे बाबा के विचार हैं वो ही मुझ आत्मा के विचार हैं। तो समानता लानी है, नहीं तो क्या होता है, एक ऊपर है एक नीचे है तो अच्छा लगेगा। बाबा एग्जाम्पल भी देते ना, जोड़ी है एक बड़ा एक छोटा चलेगा, बराबर का है, दोस्ती बराबर में की जाती है। तो हम किसकी संतान है, सुप्रीम अथॉरिटी की, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी कैसी होनी चाहिए, उसकी तरह होनी चाहिए। छोटे मोटे सिंहासन पर क्यों बैठे, जब हमको स्वयं वो ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बिठा रहा है तो हम क्यों ना उसी सिंहासन पर बैठे रहें। लेकिन आदत पड़ी हम सबको मिट्टी से खेलने की, इसलिए मिट्टी का ही चिंतन चलता रहता है। इसलिए सन्यासी तपस्वी लोग क्या करते हैं संसार में, भस्म लगा के रखते हैं, उनको स्मृति रहती है कि शरीर भी मिट्टी है, तो उनको स्मृति रहती है। और तपस्वी अर्थात वैरागी, वैराग्य की परिभाषा क्या है, संसार असार और देह मिट्टी, यह है वैराग्य की परिभाषा। संसार असार और देह क्या है, मिट्टी। तो ये हमेशा इसका चिंतन चलना चाहिए कि ये देह मिट्टी है, और इसी की वास्तविकता को भी समझना है। जब तक हम देह के प्रति हमारा वैराग्य नहीं है, और वैराग्य आएगा कब, जब इसकी वास्तविकता को जानेंगे, इस देह में है क्या, सब पता भी है, उसके बाद भी कैसे आकर्षित आकर्षण हो जाता है, क्योंकि हम अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थिति नहीं रहते, जो हमारे ओरिजिनल देवता संस्कार हैं, जो वो आत्मवान स्थिति है उसमें रहते हैं, हम विस्मृत हो जाते उसे। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, कल के स्लोगन में क्या कहा था, कल का स्लोगन क्या था, कौन सी स्थिति में रहो तो, हाँ, देही अभिमानी स्थिति में रहो तो क्या होगा, जो भी तन मन की हलचल उससे वो समाप्त हो जाएगी और अचल डोल रहेंगे। तो सारी जो तन मन की हलचल है, जो ये तन मन जो है हलचल आता है, तन की हलचल आती है, तो किससे, जब हम देह अभिमान में रहते हैं। इसलिए देही अभिमानी स्थिति जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना नेचुरल नेचर हमारी बनती जाएगी, फिर कोई भी कैसा भी देह आकर्षित करेगा ही नहीं तो लंबे समय से वही संस्कार बार बार आकर्षित करते रहेंगे, वही रिकॉर्डिंग घूमती रहेंगी, और जैसे फिर बैठेंगे ध्यान में तो वही रिकॉर्डिंग की फाइलें खुलेंगी, सीधी सी बात है। तो इसकी वास्तविकता समझना है। इसलिए बाबा ने क्या, अपने आदि अनादि स्वरूप को देखो, देवताओं को देखो, तो अगर वो देखना ही है तो जैसे सब देवी देवियां देव देवियां दिखाई दे रहे हैं, सबके सिर पर ताज लगा हुआ है, कोई दुर्गा बैठी हुई है, शेर पर सवारी है ना, शेर दहाड़ रहा है, ऐसे देखो सबको, हनुमान जी बैठे हुए हैं इधर, गणेश जी बैठे हुए हैं, उस समान से देखो, या तो फिर उससे भी ऊपर बाबा ने कहा आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। तो स्मृतियां हमारी जितनी ऊंची रहेंगी उतना हम देहिक स्मृतियों से छूटते जाएंगे, ऊंची ऊंची स्मृतियां चाहिए। तो तपस्वी अर्थात ये संसार असार और देह मिट्टी है, तो हमारी तपस्या सहज होगी, नहीं तो फिर चेतना इसी देह के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, वो ही विचार, वो ही देखना, वो ही बोलना, वो ही खाने पीने का चिंतन चलता रहेगा। और तपस्वी अर्थात सदा हल्के, संसार जी के जो वास्तविक साधक होते हैं, जो प्राचीन काल में गुफाओं में बैठकर साधना करते थे, क्या खाते थे, कंदमूल। तो यहां भी हमको हल्का भोजन करना है, जो भी बाबा के घर में मिलो हल्का हल्का भोजन करना, टू मच भारी कर लेते तो ना मन को खींचता है, वो सारा शरीर उसको पचाने में लगा रहता है, जितना भोजन ठीक से करेंगे, पर्याप्त करेंगे, मन बुद्धि उतना हल्का रहेगा। इसलिए बाबा की या बड़े दादियों की, जो भी दादियां हैं, कितनी रोटी होती थी, हम देखते दो दो चपाती खा देते। बाबा की थाली में भी देखा था ना, क्या था, सिंगी और दो रोटी और कड़वा करेला। तो भोजन भी हमारा कम होना चाहिए, जितना भोजन कम होगा उतना शरीर में भी चुस्ती फुर्ती रहेगी और साधना में भी हमारा मन लगा रहेगा, मन भी उपराम रहेगा, हल्का रहेगा, योग लगा रहेगा। और साधक क्या करते हैं, साधक अर्थात एकांत में रहने वाले, एकांत माना भीड़ में रहते हुए एकांत का अनुभव करने वाले। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं गुफा में चले जाना है या कहीं पहाड़ों पर चले जाना है, जहां रहना हमको सारी जिम्मेवारियां तो निभानी है विधि पूर्वक, लेकिन उसमें रहते हुए बार बार इस शरीर से डिटैच होने का अनुभव, जैसे मैं अकेला हूं, अकेली बैठी हूं और अकेले बनकर अकेले बाप को या उस अकेले का हाथ पकड़ा हुआ है, ये बार और अंतिम प्रैक्टिस यही काम में आएगी, क्योंकि जाना तो सबको अकेले ही है। भले इस ब्राह्मण जीवन में हम सबसे दोस्ती हमारी है या सबसे हमें स्नेह सहयोग मिल रहा है, लेकिन जाना तो अंत में अपने आप को ही है। तो तपस्वी अर्थात एकांत में रहने वाले और मौन में रहने वाले, जितना हो सके कम वाचा में आना, जितना हो सके विचारों पर नजर रखनी है, नहीं तो बहुत सारे अनावश्यक विचार हमारे ऐसे चलते रहते हैं, एनर्जी हम खुद ही अपनी वेस्ट करते रहते हैं, सोचने में, बोलने में, कहीं जा रहे हैं, देखते हैं, अगर सोचो किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, बात करने के बाद सोचो क्या ये बिना बात किए मैं रह सकता था, इस बात की जरूरत थी। जैसे भोजन करने जाते हैं तो कई पूछते भोजन किया, अभी किसी जरूरत थी पूछने की, नहीं पूछने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां बोलने की हमको जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, सिंपैथी क्या होती है, कहां मिलती है वो, सहानुभूति। सहानुभूति अर्थात हाँ, समय पर एक दो को सहयोग करना, और समय पर सहयोग करना पिछले संडे की मूल्य में क्या था, पुण्यक्रम। समय पर किसी को सहयोग करना अर्थात वो पुण्य का खाता जमा होना। तो सबसे बड़ी आज संसार में इसी की आवश्यकता है, सहानुभूति की बड़ी कमी है, परिवारों में भी, समाज में भी, या फिर कॉलेज में भी, सभी जगह, क्योंकि सब स्वार्थ आ गया सब जगह। अब वो सहानुभूति बाबा ने हम सबको सिखाई है, और सहानुभूति कब आएगी, जब हम पूरे संसार को अपना परिवार समझेंगे, जब सबसे पहले अपने प्रति सहानुभूति रखेंगे। अगर अपने प्रति सहानुभूति नहीं है तो दूसरों के प्रति कर ही नहीं सकते। नियम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, जो भी बाबा की श्रीमत है उसी अनुसार हम बर्ताव करते हैं, व्यवहार में आते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो जैसे हम सहानुभूति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सिंपैथी है, संपत्ति है। तो संपत्ति, जिसके पास संपत्ति हो उसके क्या होता है, कैसा होता है वो, जिसके पास बहुत माल पानी हो तो खुशी होती है, उसको दान करता है। बाबा ने बोला दान भी कौन कर सकता है, जिसके पास बचत, जो बचत करके रखता अपने पास, वो तो दान कर सकता है ना। तो कितने सारे खजाने बाबा ने हम सबको दिए हैं, क्या उन खजानों को हम बांटते हैं? तो अपने खजानों को रोज देखते रहना है, ऐसा ना कि हम सोचे जमा है और लास्ट में खाता खाली निकले, कोई है कि करके ले जाए। आजकल आते ना SMS, है ना, बताते हैं OTP नंबर बताओ, और बता दिया तो क्या होता है, फिर बाद में बैलेंस 000 मिलेगा। तो ऐसा ना कि हमारा भी खाता जो पुण्य का खाता बाद में दिखे तो है ही नहीं कुछ भी उसमें। समय, संकल्प, श्वास, कितने सारे खजाने, दुआएं, पवित्रता, खुशी, संतुष्टता, और कौन सा खजाना है, संकल्प, श्वास, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, समय का खजाना। तो खजानों की खान ही हमारे सामने बाबा ने खोल दिए। तो क्या सारे दिन में हम कोई ना कोई खजाना उसको यूज करते हैं? तो यूज करना है, और खजाने यूज कैसे करने हैं, सबसे बेस्ट वे बताया था, पहले भी बताया था कि मनसा सेवा से सबको शांति का ध्यान देना, शक्तियों का दान देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि बाबा ने कहा आत्माएं कमजोर हो गई हैं, उनको शक्ति कौन देगा? तो हमारे वाइब्रेशन ना बहुत काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अपने पर भरोसा नहीं होता है कि हम जिसको सकाश दे रहे हैं वो पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर अगर सामने से उसका परिणाम नहीं निकले तो छोड़ ही देते हैं, छोड़ो परिणाम तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से अपेक्षा करके बैठते हैं फल की इच्छा। बिना फल की इच्छा किए सेवा करते ही रहना है, वो अपने आप फलीभूत ही होगी, फलीभूत होगी, अपने आप वो फल आएगा समय पर। बीज बोया वो तो अपने आप निकलेगा। जैसे धरती में लाखों बीज पड़े हैं लेकिन अभी दिखाई थोड़ा नहीं देते हैं, जैसे बारिश होगी तो सारी हरियाली बाहर निकलेगी। ऐसे जो भी हमने मनसा संकल्प के जो बीज बोए हैं वो एक दिन फलीभूत अवश्य होंगे। वो हाँ, उस बीज को अगर हम समय पर पानी देते रहते हैं, समय पर उसकी देखरेख करते रहते हैं तो वो फलीभूत जल्दी होगा। अर्थात एक ही संकल्प बैठ जाएं मनसा सेवा के लिए, जैसे सर्व का कल्याण हो, तो उसी संकल्प के साथ बैठना, उसमें फिर दूसरा संकल्प नहीं ऐड करना, उसी संकल्प के साथ सेवा करते रहते हो, करते रहो कि प्रकृति के पांचों तत्वों सहित विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो। अब सारा योग इसी में निकालने का, दूसरा संकल्प ही नहीं करने का, नहीं तो मन बुद्धि कहीं दूसरा सोमान पकड़ेगा, फिर तीसरा पकड़ेगा, फिर चौथा पकड़ेगा और परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। अब जगह जगह कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा, एक जगह कुआं खोदना पड़ेगा तभी तो पानी आएगा ना, तो अलग अलग सोमान करेंगे तो फिर उतना सार्थक परिणाम नहीं। इसलिए योग का प्रयाग अर्थात प्रयोग अर्थात जब भी हमको ऐसा प्रयोग करना है तो एक ही संकल्प में स्थित रहना, चाहे वो घर में हम करते हैं घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए, या घर में जो समस्याएं हैं, कोई अशांत माहौल है उसको शांति का दान देने के लिए, तो एक ही संकल्प में स्थित हो जाना, जैसे मैं शांति का अवतार हूँ, या मैं शांति की मूर्ति हूँ, या मैं शांति की देवी हूँ, बस उसी संकल्प में बैठ जाना। सारा दिन उसी संकल्प का ही चिंतन करना है, उसी सारा दिन उसी सोमान में रहना है। भोजन बना रहे हैं उसी समय ही, उस समय भी मैं शांति की देवी भोजन बना रही हूँ, शांति का सागर इस घर में अभी अवतरित हुआ है, वो सारे इस घर की परिक्रमा कर रहा है, शांति का सागर बाप दादा दोनों ही इस घर का चक्कर लगा रहे हैं, हर घर घर के कोने कोने में जैसे शांति के वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं, घर की दीवारों में शांति के वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं, तो सारा दिन उसी का ही चिंतन करना है। एक पकड़ लिया सामान उसको छोड़ना है कि नहीं, जब तक उसमें हमारी मास्टरी ना हो जाए, नहीं तो आज हम ये सामान लेंगे फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बदल देंगे फिर तीसरा बदल देंगे, एक ही सामान पर चिंतन करना लंबे समय तक तो कुछ परिणाम निकलेगा। इसलिए आज बाबा ने स्लोगन में क्या बोला, वरदान नहीं स्लोगन, शब्द आगे पीछे हो गए। अब एक जो ईंट जहां लगानी वहां लगाएं तो अच्छा रहेगा ना, खिड़की अगर जहां लगानी दरवाजा वहां लगा दिया खिड़की जगह, और खिड़की की जगह दरवाजा, दरवाजे की जगह खिड़की, तो क्या होगा फिर। योगी तो आत्मा है वह है जो अंतर्मुखी बनकर लाइट हाउस का अनुभव करता है, तो लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करता है, अर्थात वो शक्ति आनी चाहिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के, बस मैं तपस्वी अंदर बैठी हुई हूँ, मैं आत्मा बैठी हूँ, निरंतर साधना में हूँ। और बैठना क्या है, बाबा ने क्या कहा, जो नाचना गाना बाबा के गुणों को महिमा कर रही हूँ, ओहो बाबा आपने मेरे ऊपर कितने उपकार किए है ना, मेरे जीवन को क्या से क्या बना दिया है ना, संसार में कहाँ पड़े थे, विकारों के गर्त में पड़े थे है ना, और क्या से क्या आप कहाँ बना दिया, कमल फूल समान बना दिया, अपने नैनों का सितारा बना दिया, सिर का ताज बना दिया, क्या सोचा था और क्या से क्या बना दिया हमने, संसार में हमारे प्रति जो लोगों की क्या विचारधारा होती थी, और भी बाबा ने क्या से क्या बना दिया। स्वयं भगवान जिसकी महिमा करे उसकी उसका कितना बड़ा भाग्य है। रोज बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा आके करते हैं, तुम मेरे बच्चे पार्श बुद्धि बच्चे हो, विश्व कल्याणी बच्चे हो, फिर धीरे से बीच में बोल देगा तुम बंदर बुद्धि भी थे पहले, एहसास भी दिलाता है, तो कितने ऊंचे ऊंचे सुमान बाबा हमको देते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो तपस्या अर्थात जिंदगी एक संगीत की तरह बन जाए, उसके लिए कुछ सोचने का नहीं पड़े, रिलैक्स होकर बैठना है योग में, ऐसा नहीं बोझिल होकर बैठना है, बड़ा मन को पकड़ के बैठना नहीं, खुशी खुशी बैठना है, हल्के से बैठना है, प्यार से उससे बातें करनी है, जैसे घर में मेहमान आता है, कोई प्रिय मेहमान आए तो हम कितना प्यार से बातें करते हैं, तो ऐसे सोचना कि बाबा मेरे घर में आप मेहमान बन के आया है, हम दोनों आपस में आज खूब बातें करेंगे, अपने दिल की आपस में सारी लेन देन करेंगे, सारी बड़ास निकाल देंगे, आज बाबा को पत्र लिखेंगे है ना, अपनी जो भी दिल की बातें हैं, कमी कमजोरियां भी और अच्छाइयां भी, जो भी सारे दिन में किया सारा बाबा को बता देंगे। तो संबंध जोड़ना उसके, तपस्या अर्थात क्या, संबंध जोड़ना बाबा से, याद सहज याद है, नेचुरल याद है, तो दिल की बात करनी है उसे, नजदीकियां हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए लास्ट में क्या होता है, दोनों समानता का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। ये संसार में प्रेमी होते हैं, कितना प्रेम होता है उनका आपस में, एक दो के बिना रहते भी नहीं है, और एक दो के बिना रहते भी नहीं है, और मिलने के लिए लड़ाई झगड़ा तक भी कर लेते हैं घर से। वो हमको तो बाबा घर छोड़ने के लिए कहता ही नहीं है, वो तो संसार को जोड़ने के लिए आया हुआ है। तो सबके बीच में रहते उसको अपने फैमिली का मेंबर बनाना, और ये तो सारी अंदर की बात है, बाहर की तो बात ही नहीं है कि किसी को हम बाहर के लेके रख लें तो घर वाले उसको भी करेंगे, रोकेंगे, ये तो सारे मन के अंदर की बात है। तो बाबा के साथ बातें करनी है, ओहो बाबा आप मेरे दिल के मीत हो, है ना, मेरे दिल का हाल चाल लेने वाले हो, मेरे जीवन को कितना श्रेष्ठ बना दिया है, इतना ऊंच पवित्र बना दिया है, जो संसार असंभव समझता है वो सारा हम हमारे जीवन में जैसे संभव कर दिया। इसलिए कि तपस्या का परिभाषा आज ये भी बताए, तपस्या अर्थात सहज सफलता, मुश्किल नहीं है, सहज सफलता, असंभव भी संभव हो गया। जो भी हमारे जीवन में धारणाएं आई हैं ये क्या था संसार के लिए, तो आज भी असंभव है ना, लेकिन हमारे जीवन के लिए जैसे नेचर नेचर हो गई है। कोई सवेरे उठना मुश्किल लगता है, कोई भोजन खाने के लिए मुश्किल लगता है, कोई मन जाता है कि बाजार में जाके जलेबी खा ले या गुलाब जामुन खा ले या वो पानी पूड़ी खा ले, नहीं करता ही नहीं, मन जाता ही नहीं, जीव नेचर नेचर होगी ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन जो है तपस्या नेचर नेचर हो जाए, हर कदम में सफलता, सफलता जैसे कदमों में समाई हुई परछाई की तरह हमारे पीछे आए। तो बाबा ने कितनी सारी बातें बताई, अनेक बातें हमारे जीवन को जैसे एकदम जागृत करती हैं, बार बार मन बुद्धि में उन दूसरी बातें छोड़ के इन बातों को बुद्धि में घुमाते रहना है, रिफ्रेश करते रहना बीच बीच में, तो ये जीवन का मजा आएगा। तो तपस्या का प्रत्यक्ष फल जीवन में खुशी का अनुभव होगा, इस जीवन में खुशी नहीं होगी तो कहां रहेगी खुशी। भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं, उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, हम ही उससे दूर हो जाते हैं, वो तो फिर भी हमारे पीछे पीछे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके दूरी उसी से दूरी बना के रखते हैं। क्योंकि बाबा के माँ वाक्य, हजार बुझाओं वाला बाप साथ में है तो दो बुझाओं वाला का हाथ क्यों पकड़ते हो, क्योंकि आदत पड़ी है, सर्वशक्तिवान है और फिर गुलामी। तो कितनी सारी बातें थी मुरली में आज, तपस्या अर्थात स्वराज्य अधिकारी, तपस्या क्या बनाती है राजा बनाती है, तपस्या क्या बनाती है हमारे भाग्य को बनाती है, और क्या तपस्या बनाती है विश्व का राज्य भाग्य दिलाती है, और तपस्या अर्थात तू मेरा मैं तेरी, जो बाबा का है वो सारा अपना ही हो गया, अभी जो उसके ज्ञान गुण शक्तियां वो सारे खजाने अपने हो गए, लेकिन स्मृति में लाना पड़ेगा उसको। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, प्राप्तियों को स्मृति में रहो तो भाग्य की खुशी रहेगी। वरदान था ना आज का, कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, कल का वरदान क्या था, कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, कोई सेलिब्रेशन ना दे तो फिर भी कैसे रहो, अचल अडोल निर्विघ्न आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अर्थात कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, एक डिस्टर्ब करे, दूसरा करे, तीसरा करे, कोई सेलिब्रेशन ना दे, सहयोग ना दे, फिर भी अचल अडोल। स्वयं भगवान हमको सेलिब्रेशन देने के लिए आया हुआ है, तो मनुष्य की सेलिब्रेशन से क्या होगा, तो उसकी सेलिब्रेशन तो हमारे लिए कितनी बड़ी है, भगवान की मुरली कितनी बड़ी सेलिब्रेशन है हमारे लिए, सब समस्याओं का समाधान इसी मुरली में मिल जाता है। तो तपस्या अर्थात किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं, गुलामी ये नहीं कि बड़े हमको सेवा करें तो हमको वो नहीं मानना है, वो गुलामी नहीं, वो तो हमको सेवा की ऑफर मिल रही है। गुलामी अर्थात हमें अपने ही विचारों की गुलामी ना हो, या दूसरे के स्वभाव संस्कार की गुलामी, या जो हमारे पिछले स्वभाव संस्कार है उनकी गुलामी, बार बार मन उन्हीं के बश हो जाए, अधीनता समाप्त अधिकारी बन गए, बताया ना बाबा ने, तपस्या अर्थात अधिकारी, अधीनता सारी समाप्त होगी, स्वतंत्र होकर रहना है, मन को स्वतंत्र रखना है, उसको घूमने दो थोड़ा, भगवान के साथ बातें करने दो, अभी क्यों देदारियों के पीछे हमारा मन जाता है, जबकि जन्म जन्म ने दुख भी पाया, धोखा भी खाया, फिर भी मन उतर जाता है। तो कंट्रास्ट देखना है, क्या थे क्या बन गए, वो शूद्र जीवन और ये ब्राह्मण जीवन, कितना फर्क पड़ गया, वो कहां नाली में पड़े हो और कहां बाबा ने अपने दिल तख्त पर बिठा लिया, प्योर दिल तख्त, बाबा ने कहा सारा दिन इस तख्त पर बैठे रहे, उतरते क्यों। तो तपस्या अर्थात भगवान के दिल तख्त नशीन, मैं तेरा तू मेरी, अर्थात बाबा का हाथ हमेशा पकड़ के रखना, उसकी श्रीमत की छत्रछाया के नीचे हमेशा चलते रहना, और तपस्या अर्थात छोटी छोटी बातों में क्या करना, जिम्मेवारियों को समझकर माथा भार नहीं करना है, हल्का माथा रखना है, बोझ ना अनुभव हो इधर, या विचार खिंचावट ना रहे अंदर, नहीं तो कई बार योग में खिंचावट क्यों होती है, क्यों होती है खिंचावट? क्योंकि हम भारी मन से बैठते हैं, एंजॉय करो, योग माना एंजॉयमेंट है, ये मनोरंजन है, खेल है। बाबा ने बताया ना, फुटबॉल आएगा तो क्या करेंगे, हर एक कोई उसको किक मारने के लिए दौड़ेगा, फुटबॉल आए नहीं तो खेल में मजा कैसे आएगा? तो जीवन में परिस्थिति तो आएंगी, उनसे घबराने का नहीं है, उनसे भी हमको सीखना है कुछ। तो तपस्या अर्थात खेल खेलने वाले, तपस्या अर्थात हर कार्य सफल सहज सफल, असंभव को संभव करने वाले, तपस्या अर्थात नाचना गाना और मौज बनाना, जिंदगी एक संगीत की तरह बन जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, बाबा का हाथ हमेशा पकड़ के रखने का। ओम शांति।